श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। चतुर्थ पुस्तक में जो उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति का ही प्रकरण चल रहा है, गुजगार आदि, उसमें एक जीव की अपेक्षा हम काल देख रहे थे। ओघ में देख लिया था, अभी मार्गणाओं में देख रहे हैं, यानी भुजगार का लगातार काल, अल्पतर का काल या अवस्थित का जो कहां जहां होगा। अब यहां हम पृष्ठ संख्या 30 पर आ गए, 30, नीचे का पैराग्राफ वहां से पढ़ेंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तको में, हमने नारकियों में देखा, तिर्यंचों में, सामान्य में देखा, पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि उसमें भी देखा, अभी पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों की बात चल रही है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, तथा शेष स्थिति विभक्तियों का भंग तिर्यंचों के समान है, शेष यानी भुजगार आदि जो है वो तिर्यंच के समान है, किंतु इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और पुरुषवेद की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 17 समय है। तिर्यंचों में हमने कैसे देखा था, देखो तिर्यंचों में जब देखा था तो उसमें निकालो 29 पृष्ठ, तिर्यंचों में हमने देखा था मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति का काल 4 समय, ओक के समान ने 4 समय देखा था, अल्पतर का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 3 पल्य देखा था, वो तो यहाँ होगा नहीं। तथा अंतर्मूर्त क्यों कहा, उसकी लाइफ अंतर्मूर्त की है इसलिए अंतर्मूर्त कहा। तथा अवस्थित स्थिति विभक्ति का काल ओघ के समान है, तिर्यंचों में जब अवस्थित का ओघ के समान देखा था हमने, यानी समान बंद होता रहे, तो एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक देखा था। और वहां अभी हमें तो 12 कषायों की बात देखनी थी ना, यहाँ मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों का उन्होंने बताया था, तो 12 कषाय 9 कषाय और अनंतानुबंधी चतुष्क की अल्पतर स्थिति विभक्ति का भंग मिथ्यात्व के समान है, ये साधिक 3 पर, यहाँ तो वैसा ही होगा अंतर्मूर्त होगा। तथा शेष स्थिति विभक्तियों का काल ओग के समान है, उन्नीस समय किसका देखा था, कषायों का देखा था, परंतु यहाँ तो ये हाँ, मगर उससे ये ज्यादा हो जाता है ना, सॉरी भुजगार की बात आप देख रहे थे, वो 1700 में हमने कहाँ देखा था, लिखो, ये हमने देखा था कि पृष्ठ संख्या 27 में, नारकियों में नहीं, हमें ओघ में देखना है ना, ये है 22 पृष्ठ पर विशेषार्थ में। हाँ, दे 19 पेज के बाद, हाँ 20 में हमने देखा था 16 कषाय और 9 कषायों का काल कितना होता है, तो उसका उत्कृष्ट काल 19 समय बताया था। हाँ, 17 समय है क्योंकि ये पर्याय बदलनी नहीं है, 19 समय जब घटित करते तो दो पर्यायों को लेते, दो भवों को लेते हैं, फिर भी देखते हैं। यहाँ देखो, ये हम पढ़ेंगे 20 पेज पर, 20 हाँ 41 नंबर का पॉइंट, नीचे का पैराग्राफ, जिसके 17 समय अधिक एक आवली प्रमाण आयु शेष है, ऐसे एकेंद्रिय के द्वारा अनंतानुबंधी क्रोध को छोड़कर शेष मान आदि 15 प्रकृतियों के क्रम से 15 समयों में अध्याक्षय से एक दूसरे को देखते हुए उत्तरोत्तर स्थिति बढ़ाकर बांधने पर, अभी हमारा पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त चल रहा है तो एकेंद्रिय में से तो ला नहीं सकते, तो पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त में से पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त में तो जा सकते हैं, पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त मार्गणा है हमारी, ओघ में हमने एकेंद्रिय में से पंचेंद्रिय में लाया था, करने दो ना, परंतु हमें वो भुजगार कहाँ घटित करना है, पंचेंद्रिय, हाँ एकेंद्रियों में से आता है, अगर वो लेते हैं तो वहां तो इन्हें वो आवली काल हमने वहां बिताया था, वो तो वहां तो घटित नहीं कर सकते हैं, यानी यहाँ वहां बंद करके आया है और आवली के बाद यहाँ आप भुजगार लेना है, देखेंगे उसको भी। और बंधावली के बाद उसमें हमने 17 समयों तक उसने, यानी ये 15 समय है उसका संक्रमण किया, 15 समय तो संक्रमण हुआ, 16वां अनंतानुबंधी का इटसेल्फ ज्यादा बांधा है ना, हाँ तो वो 16वां समय हो गया, हाँ 17वें समय में संक्लेशय हुआ, उसका अनंतानुबंधी का फिर बढ़कर बांधा, फिर मरकर एक मोड़ा में संगी में उत्पन्न हुआ है, तो असंगी जैसा बंद किया और फिर हाँ वो दो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ असंगी पंचेंद्रिय में ये पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त में ही रखना है, ये दो भवों को लेते हैं तब ये घटित होते हैं, तो यहाँ एक ही भव लिया है तो 17 समय घटित किए हैं। तो बीच में गैप हो जाएगी, एक एक समय बढ़ाकर बांधना है ना, हमें बीच में गैप नहीं चाहिए, भुजगार कंटिन्यूस चाहिए। हाँ तो यहाँ क्या कहते हैं, पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त में, फिर पढ़ते हम 30 पृष्ठ पर, मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त का जो स्थिति है उसकी उत्कृष्ट स्थिति अपर्याप्त में रहने की वो अंतर्मूर्त है, तथा शेष स्थिति विभक्तियों का भंग तिरियंचों के समान है, अभी जो हमने तिरियंचों में पढ़ा, परंतु इतनी विशेषता है कि स्त्री वेद और पुरुष वेद की गुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 17 समय है। देखो ये विशेषार्थ पढ़ लेते हैं इसके साथ साथ, आगे के पृष्ठ पर है 31 पृष्ठ पर विशेषार्थ, बाद में हम बीच वाला पढ़ेंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्तकों की आयु अंतर्मूर्त से अधिक नहीं होती। इसलिए इनमें सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। एक आयु ली, हाँ एक भाव लिया, तथा इनके स्त्रीवेद और पुरुषवेद की भुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल 18 समय प्राप्त न होकर 17 समय ही प्राप्त होता है। इसका विशेष खुलासा जिस प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि में कर आए हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। अभी हमने पंचेंद्रिय तिर्यंच में भी पढ़ा था 29 पृष्ठ पर और 30 में आए हैं। वहाँ पहले ही लाइन में देखा था मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की गुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व की अपेक्षा 3 समय लिए, और शेष जो है ना कषाय और 9 कषाय उसकी अपेक्षा 18 समय है, और उसमें पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों में ये विशेषता है स्त्रीवेद की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 17 समय, अन्य में 18 समय लिए। उन 30 पेज पर मैं पढ़ रही हूँ शुरू में, और ये योनिमतियों में पुरुष वेद और नपुसक वेद की भुजगार का उत्कृष्ट 17 समय। देखो उसके कारण हमने विशेषार्थ में पढ़ा था, फिर दोबारा पढ़ते हैं। देखो विशेषात की तीसरी लाइन में उक्त 3 प्रकार के तिर्यंचों में 16 कषाय और 9 कषायों की भुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल 18 समय प्राप्त होता है, जिसका खुलासा इस प्रकार है। उक्त 3 प्रकार के तिर्यंच असंगी भी होते और संगी भी। अब ऐसा असंगी जीव लो जिसकी आयु में 1 आवली और 16 समय शेष है, तब उसने विवक्षित कषाय को छोड़कर शेष 15 कषायों की उत्तरोत्तर भुजगार स्थिति का 15 समय में बंद किया, जैसे हमने पहले देखा था। पश्चात 1 आवली के बाद जब आयु में 16 समय शेष रहे तब उसने उन भुजगार स्थितियों का 15 समय के द्वारा विवक्षित कषाय में संक्रमण किया। अनंतर 16 समय में उसने अध्याक्षय से भुजगार स्थिति को बांधा और 17वें समय में रुजुगति से संगियों में उत्पन्न होकर संगियों के योग्य स्थिति का बंद किया। पश्चात 18वें समय में संक्लेश से भुजगार स्थिति को बांधा, यानी यहाँ 18 समय हुए थे। परंतु स्त्रीवेद की बारे में क्या पूछा उन्होंने, स्त्रीवेद में तो 17 समय बताया था, किंतु तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त के स्त्रीवेद की और योनिमति तिर्यंच के पुरुष वेद और नपुसक वेद की भुजगार स्थिति के 17 समय ही प्राप्त होते हैं, जिसका उल्लेख मूल में किया ही है। बात यह है कि जो जिस वेद के साथ उत्पन्न होता है उसके पूर्व पर्याय के अंतिम समय में अंतर्मूर्त में अंतिम अंतर्मूर्त में वह वेद ही बांधता है, यानी वही उसी वेद का बंद होता है, वह वेद ही बांधता है ना उसी वेद का बंद होता है। तो जो योनिमति में उत्पन्न हो गए तो पूर्व भव में वो स्त्री वेद का ही बंद कर रहे हैं। तो योनिमति तिर्यंच में उत्पन्न होने वाले जीव के पूर्व पर्याय के अंत में पुरुष और नपुसक वेद का बंधन नहीं होने से 16 कषायों का उक्त वेदों में संक्रमण भी नहीं होता, अतः उक्त वेदों के भुजगार के 18 समय घटित नहीं होते, मैंने उसके 17 ही समय घटित होते ये बात यहाँ जताई थी। अब वही बात यहाँ अभी हम जो पढ़ रहे थे, अब ये पंचेंद्रिय तिरियंच लब्धि अपर्याप्त कौन है, कौन से वेद वाले, नपुसक वेद वाले, तो इनके बारे में स्त्री और पुरुष वेद दोनों लेना, दोनों के लिए 17 समय, क्योंकि यहाँ आने से पहले वो नपुसक वेद का ही बंद करेंगे। किसके लिए? हाँ, जैसे हमने पंचेंद्रिय तिरियंच में लिए, दो लिए, संगीका या असंगीका, ऐसे यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ एक आयु लिखी है, परंतु लब्धि अपर्याप्त कौन की, लब्धि अपर्याप्त कौन की लिखा है, अनेक उसके, या एक आयु भी अंतर्मूर्त है और लगातार रहे तो भी अंतर्मूर्त है। अब हम फिर पढ़ते 30 पृष्ठ पर, हम जहां हमने छोड़ा था पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त को में ही, हमने मिथ्यात्व की बात देखी, 16 कषाय 9 नौकषाय की बात और स्त्रीवेद पुरुषवेद की बात देखी। अब नीचे से दूसरी लाइन, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अब सम्यक तो और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार होगी कि नहीं होगी इनके, क्यों नहीं होगी? यहाँ तो कोई प्राप्ति होने का सवाल ही नहीं है। हाँ, तो होगा तो उद्वेलना ही होती है, तो उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, वो उसकी स्थिति की अपेक्षा बताया। और एक समय कैसे घटित होगा, यहाँ अंतिम समय है उसका और उद्वेलना पूरी होगी। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि 26 प्रकृतियों की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व की अपेक्षा 2 समय। तथा शेष की अपेक्षा 17 समय है। यहाँ एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त लिया था, हाँ, देखो उसका नीचे फिर खुलासा पढ़ते हैं, विशेषार्थ में 5वीं लाइन, मनुष्य लब्धि अपर्याप्तकों के यद्यपि सब प्रकृतियों की भुजगार आदि स्थितियों का काल पंचेंद्रिय तिरियंच लब्धि अपर्याप्तकों के समान ही होता है, फिर भी 26 प्रकृतियों की भुजगार स्थिति के उत्कृष्ट काल में कुछ विशेषता है। बात यह कि मनुष्यों में संगी और असंगी ये दो भेद नहीं होते, पंचेंद्रियों में या लब्धि अपर्याप्तकों में, तो अभी हमने देखे थे उसमें संगी असंगी दोनों भेद है, अतः इनके मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल 2 समय और 16 कषाय तथा 9 कषाय की भुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल 17 समय ही प्राप्त होता है। हमने वहां असंगी में से संगी में उत्पन्न किया था, इसलिए एक समय बढ़ा था तिरियंचों में। हाँ, नपुसक वेद ही होता है, परंतु वहां जो एक समय बढ़ाया था ना, 18वां समय 19 जो एक्स्ट्रा सम बढ़ाया था, तो असंगी में से संगी में उत्पन्न कराया था, इसलिए एक समय और एक्स्ट्रा बढ़ा गया था। उक्त प्रकृतियों की भुजगार स्थिति के वही विशेषार्थ पढ़ रहा हूं, उक्त प्रकृतियों की भुजगार स्थिति के उत्कृष्ट काल के विषय में यही कारण सामान्य पर्याप्त और योनिमति मनुष्यों के जानने चाहिए। वो अभी हमने पढ़ा नहीं, वो अभी पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। ऊपर का 56 नंबर का पॉइंट, सामान्य, पर्याप्त और मनुष्य, मनुष्य नहीं चाहिए ना, हाँ मनुष्यत्रिय, हाँ मनुष्यत्रिक जब हम कहते हैं तो सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्य नहीं करते हमेशा में। तो सामान्य, पर्याप्त और मनुष्यनी, इन तीन प्रकार के मनुष्यों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व की अपेक्षा 2 समय तथा शेष की अपेक्षा 17 समय है। अभी बताया था ना, यह संज्ञा असंज्ञा नहीं है, इसलिए वो हाँ जो बंद में जो डिफरेंस पड़ता है एक समय के लिए वो नहीं पड़ेगा। तथा शेष भंग पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान है। इतनी विशेषता है मनुष्य पर्याप्तकों में। 12 कषाय और 9 कषायों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि त्रिभाग से अधिक 3 पल्ल्य प्रमाण है। जब हमने तिर्यंच में देखा था अल्पतर का उत्कृष्ट काल तो साधिक 3 पल्ले देखा था, यानी वहां 3 पल्ले में उत्पन्न होने के पहले अंतर्मुहूर्त पहले ही उन्होंने अल्पतर शुरू किया था और वहां 3 पल्ले, क्योंकि भूभूमि तो अल्पतर होता ही है, परंतु यहाँ क्या लिया है, पूर्व कोटि से अधिक 3 पल्ल्य, तो पूर्व कोटि का त्रिभाग लेना है। त्रिभाग क्यों लिया, देखो उनको तो सम्यक तो प्राप्त करके वहां भेजना है, सम्यक तो प्राप्त करने के पहले आयु बांध, तो आयु बांधी पहले उसने, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य में जाना है ना, आयु बांधी है, परंतु तो त्रिभाग तक तो उसने आयु पहले बांधी है, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। सम्यक दर्शन ये क्या लिया है, यहाँ तो ऐसा भी ले सकते ना, वहां क्षायिक नहीं कराना उसको, शायिक नहीं, किस किस की बात की, यहाँ 12 कषाय लिए ना, हाँ मिथ्यात्व को नहीं लिया, शायिक भी करेंगे हम, यहाँ शायिक करके वहां गया है तो कषाय उनको तो घटेगा, हाँ मनुष्य पर्याप्त ही करेंगे ना शायिक, तिर्यंच में से तिर्यंच में तो शायिक वाला नहीं ले सकते। हाँ देखो नीचे लिखा होगा, हम देखेंगे अब नीचे विशेषार्थ में, जहां हमने देखा था ना, वहां हमने नीचे से 5वीं लाइन में पढ़ा था, 3 प्रकार के मनुष्यों का शेष कथन पंचेंद्रियों के तिर्यंचों के समान है, किंतु मनुष्य पर्याप्तकों के 12 कषाय और 9 कषायों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल एक पुरोकोटि का त्रिभाग अधिक 3 पल्ल्य है, क्योंकि जिस मनुष्य पर्याप्तक ने आगामी भव की आयु बांधकर तदनंतर क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, उसके मनुष्य पर्याप्तक अवस्था के रहते हुए उक्त काल तक अल्पतर स्थिति देखी जाती है। यानी हमने जो डिराइव किया तो बराबर है ना, हाँ वही तो क्षायिक करेगा तभी मनुष्य में से मनुष्य में जाएगा, इसीलिए पहले मनुष्य आयु बांधी है, बाद में सम्यक तो प्राप्त किया, बाद में क्षायिक हो गया, ये तो पूर्व कोटि का त्रिभाग में सब कुछ वो ले लेना। हाँ हाँ वही त्रिभाग मिलाया है, पंत विभाग में से वो अंतर्मूर्त कम करेंगे। अधिक तीन पल, यानी तीन पल्ले में त्रिभाग मिलाना। अब वो त्रिभाग में से थोड़ा सा कम करो तो भी हम त्रिभागी कहेंगे उसको, इस तरह से। नहीं नहीं, तीन पल्ले तो पूरे लिख रखना, और उसके पहले त्रिभाग, पहले पूर्वकोटि की त्रिभाग, पहले उसने आयु बांधी, अंतर्मूर्त आयु बंध का किया, फिर सम्यक तो प्राप्त किया। तो सम्यक तो प्राप्त करने के समय से लेकर उसका अल्पतर शुरू हुआ, फिर वो क्षायिक होने के लिए जितना काल लगे वो भी अल्पतर ही होता चला जाएगा उसका। एक बार सम्यक तो प्राप्त करते ही उसका अल्पतर शुरू हो गया वहां पर। नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर मनुष्य आयु बनती नहीं है। हाँ, वो देवों के लिए, देव और नार की सम्यक दृष्टि मनुष्य आयु बांधते हैं, परंतु मनुष्य और तिर्यंच सम्यक दृष्टि देवायु ही को बंद करते हैं। इसलिए मनुष्य सम्यक दर्शन होने के बाद कोई मनुष्य आयु बांध कर अन्य भव में मनुष्य आयु से लेकर जाए, ये बात नहीं बन सकती। और वो भी क्षायिक होगा तो ही उसका सम्यक तो टिकेगा, वो भी कंडीशन है। देखो, मनुष्य आयु बांधी है किसी ने और सम्यक दृष्टि हुआ है, अब वो मान लेते वेदक सम्यक दृष्टि रहा, जैसे अभी यहाँ की बात करेंगे, पंचम काल का मनुष्य है, उसने पहले मनुष्यायु बांधी है, बाद में सम्यक तो प्राप्त किया है, अब यहाँ वो क्षायिक नहीं होगा तो मिथ्यात्व में जाकर वो मनुष्यायु में जहाँ जन्म लेना है वहां जन्मेगा, क्योंकि क्षायिक बिना वो मनुष्य में से मनुष्य सम्यक दृष्टि नहीं जा सकता। हाँ, मनुष्य में से मनुष्य होना है, मनुष्य में से तिर्यंच होना है, मनुष्य में से नारकी होना है, तो क्षायिक होना आवश्यक है। मनुष्य में से देव जाने के लिए वो वेदक के साथ जावे चले, द्वितीयोपशम के साथ जाए चले, आगे बढ़ेंगे अभी हम 31 पेज नीचे का पैराग्राफ। देवों में नारकियों के समान जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है, जैसे नारकियों में हमने असंगी में से उत्पन्न किया था भुजगार के लिए, इतनी विशेषता है। यहाँ मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 33 सागर है। वहाँ कुछ कम 33 सागर किया था, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया था। भवनवासी और व्यंतर देवों में इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि यहाँ पर अल्पतर स्थिति विभक्ति का उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। ज्योतिषियों से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में दूसरी पृथ्वी के समान जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि सौधर्माधिक स्वर्गों में अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। नरकों में क्या लिया था? कुछ कम अपनी उत्कृष्ट स्थिति, क्यों? वहां जाने के पश्चात सम्यक तो प्राप्त किया था और यहाँ तो सम्यक तो के साथ उत्पन्न होंगे, इसलिए सौधर्माधिक लिखा, बहुनत्रिक को छोड़ दिया था। आनत कल्प से लेकर उपरीम ग्रेविक तक के देवों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल, जघन्य स्थिति प्रमाण, उस स्वर्ग की जघन्य स्थिति लेना, क्यों? वहां तो अल्पतर ही होता है, मिथ्या दृष्टि हो तो भी अल्पतर ही है वहां पर, इसलिए जघन्य काल कितना, तो उस स्वर्ग की जो जघन्य आयु है उतना, और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। अनंतानुबंधी चतुष्क की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय, अनंतानुबंधी की अल्पतर जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। हाँ, अल्पतर का एक समय ऐसा होगा कि विषय योजना का अंतिम समय है, उसके पहले भी अल्प ओ अनंतानुबंधी चतुष्क की अल्पतर स्थिति भक्ति का जगने का एक समय नहीं, फिर भी एक समय में मरेगा, अल्पतर ही होता आता है ना। एक मिनट ऐसा लेना ना कि सम्यक नीचे देखेंगे, देखो नीचे से सातवीं आठवीं लाइन है, कुछ चार चार, जिसने अनंतानुबंधी की विषय योजना की है, ऐसा कोई एक जीव सासाधन में जाकर पहले समय में अवक्तव्य स्थिति को हुआ, तो अवक्तव्य हुआ और दूसरे समय में अल्पतर किया और फिर मर गया। यानी अटपटा है सारा, नहीं तो घटित नहीं हो रहा था ना। देखो अभी हम ऊपर का ही पढ़ रहे हैं, अनंतानुबंधी चतुष्क के अल्पतर स्थिति व्यक्ति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। यानी वहां तो कंटिन्यूस आनंद से लेकर लिया है ना, तो घटता चला जाता है। तथा अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का काल ओघ के समान है, कितना है, एक ही समय होता है। विसंयोजना के बाद फिर संयोजना होती है, उस समय लेना। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय उद्वेलना की अपेक्षा और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। शेष कथन ओघ के समान है। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल जघन्य स्थिति प्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण। सर्वार सिद्धि तक में तो उत्कृष्ट जघन्य एक ही है ना, उनकी स्थिति उतनी होती है 33 सागर, किंतु इतने विशेषता है कि सम्यक्त्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय है। ये कैसे होगा, हाँ, कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा। तथा अनंतानुबंधी चतुष्क की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। अब यहाँ वो एक समय नहीं लिया, क्योंकि यहाँ कोई सासाधन में नहीं जाता, तो अंतर्मूर्त कैसा लिया, अंतर्मूर्त में विषय योजना कर दिया आने पर। विषय योजना की, हाँ, अल्पतर अंतर्मूर्त तक हुआ ना, कहाँ है, अंतर्मूर्त तक होता रहा, बाद में उसने विषय योजना ही कर दी। नीचे क्या लिखा है देखेंगे, अभी हम पूरा ही विशेषात पढ़ेंगे। यानी उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त के काल के भीतर जिसने विसंयोजना की है उसको ले लेंगे वहां पर अंतर्मूर्त में। विशेषांत सर्वार्थ सिद्धि के देवों के सब प्रकृतियों की उत्तरोत्तर अल्पतर स्थिति ही होती है, इसलिए सामान्य देवों के सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल 33 सागर है। जब सामान्य देव देखते हम तो जहाँ पॉसिबल है उसकी बात करेंगे, तो नरकों में तो हमने कुछ कम 33 लिखा था, यहाँ तो पूरा ही 33 सागर कहेंगे। भवनत्रिक में सम्यक दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते हैं, अतः यहाँ सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण प्राप्त होता है। यानी वहां जाने के पश्चात उन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया और बाद में उर्वरित जो आयु है। तथा बारहवें स्वर्ग तक संकलेशानुसार स्थिति में घटा बढ़ी होती रहती है, इसलिए यहाँ तक सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का जघन्यकाल एक समय भी प्राप्त होता है। परंतु बारहवें स्वर्ग के ऊपर यद्यपि सब प्रकृतियों की स्थिति उत्तरोत्तर अल्प ही होती जाती है, फिर भी नौ ग्रवेक तक के जीव सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के होते हैं, तथा सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि भी। अतः यहाँ अनंतानुबंधी चतुष्क सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति अल्पतर और अवक्तव्य दो प्रकार की बन जाती है, किंतु शेष कर्मों की एक अल्पतर स्थिति ही प्राप्त होती है। हमने देखा था ना, वहां पर अल्पतर होते हैं, परंतु जो उद्वेलना के बाद सम्यक तो प्राप्त करते तो उसकी अवक्तव्य भी होगी सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व में, और अनंतानुबंधी के विसंयोजना करके जो फिर नीचे मिथ्यात्व में आया है तो उसके भी अवक्तव्य होगी। तदनुसार 22 प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल 22 में किसको छोड़ा? अनंतानुबंधी चार सम्यक तो असम्यक मिथ्यात्व, क्योंकि उनमें अल्पतर के साथ अवक्तव्य भी होता है। तो ये 22 प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण, जो जघन्य आयु है उतनी, और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण प्राप्त होता है। किंतु शेष 6 प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल एक समय भी बन जाता है, क्योंकि अभी यहाँ वो एक्सप्लेनेशन दिया, जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है, अनंतानुबंधी हुआ है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है, ऐसा कोई एक जीव सासाधन में जाकर पहले समय में अवक्तव्य स्थिति को प्राप्त हुआ और दूसरे समय में अल्पतर स्थिति को प्राप्त करके यदि मर जाता है तो अनंतानुबंधी की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। इसी प्रकार उद्वेलना की अपेक्षा उक्त स्थानों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल एक समय बन जाता है। यानी वो उद्वेलना करते करते वहां जन्मा है और पहले समय में सत्ता थी, दूसरे समय में नष्ट हो गई, तो अल्पतर का एक समय घटित होगा। तथा अनुदिशादि में 22 प्रकृतियों की अल्पतर स्थितियों का स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, यह तो स्पष्ट ही है, वहां भी ये बात होती है। किंतु शेष 6 प्रकृतियों में ये सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का अल्पतर होगा क्या? वहां पर ये अल्पतर का एक समय होगा नहीं, क्योंकि उद्वेलना की बात ही नहीं हो सकती। हाँ हाँ, तो कितनी होगी? तो अपनी अपनी तो जघन्य उत्कृष्ट आयु प्रमाण होगा, परंतु अनंतानुबंधी में विशेषता है। तो 6 प्रकृतियों में अनंतानुबंधी चतुष्क की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि वहां उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त काल के भीतर जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर देता है, यही देखा था ना हमने, उसके अनंतानुबंधी की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल अंतर्मूर्त ही प्राप्त होता है। तथा सम्यक्त्व की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल, वो कृतकृत्य हमने पहले देखा था। सम्यक्त्व की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल, एक समय कृतकृत्य वेदक के सम्यक्त्व की अपेक्षा प्राप्त होता है, यानी सम्यक मिथ्यात्व का तो होगा ही नहीं, सम्यक्त्व का कृतकृत्य वेदक में होगा। अब ये तो गति मार्गणा हुई, अब एकेंद्रियों में घटित करें। एकेंद्रियों में मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। ये तो एकेंद्रियों में से पंचेंद्रियों में आने वाले के हमने चार समय लिखे थे दो पर्यायों के आश्रय से। यहाँ एक समय और दो समय अर्धाक्षर संक्लेश से। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय, क्योंकि समय तक उसने अल्प बांधी फिर ज्यादा बांधी। और उत्कृष्ट काल पल्योपम के असंख्यात व भाग प्रमाण है, ये क्यों कहा? मिथ्यात्व की बात। देखो अधिक स्थिति लेकर आया है, अधिक स्थिति के साथ एकेंद्रियों में जन्मा है। अब वो पल्ले के असंख्यात विभाग काल में उसके स्थिति कांड घात वगैरह जो उसका चलेगा ना, और उसकी स्थिति घट जाएगी, हत समुत्पत्ति जिसको कहेंगे, तो वो होने के लिए पल्ले का असंख्यात भाग लगता है। हाँ सभी कर्मों की घटेगी ना, आगे देखते हैं। देखो विशेषार्थ में, हाँ हाँ देखो सब प्रकृतियों की मिले ना, एक लास्ट में एकेंद्रियों में सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है, क्योंकि जो पंचेंद्रिय जीव एकेंद्रियों में उत्पन्न होकर निरंतर एकेंद्रिय ही रहते आए हैं, उनमें सत्ता में स्थित स्थिति को घटाकर एकेंद्रिय के योग्य करने में पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण काल लगता है। यानी उतना तो अपना तर्क ठीक है, स्थिति घटती चली जाती है ना एक केंद्रीय में रहने पर। हाँ इसी प्रकार वो हत समुत्पत्ति होता है, पंचेंद्रियों की योग्य स्थिति लेकर आया है, अब यहाँ स्थिति घटाते घटाते एक केंद्रियों की योग्य हो जाती है, उसी को हत समुत्पत्ति कहते हैं। और वो होने में पल्ले का संख्या ना। अवस्थित स्थिति विभक्ति का काल ओघ के समान है, जगन्य एक समय और अंतर्मूर्त। 16 कषाय और 9 कषायों की भुजगार स्थिति विभक्ति का भंग दूसरी पृथ्वी के समान है। भुजगार यानी वहां तो जैसे पहले पृथ्वी में असंग में से आया है, वैसे यहाँ कम स्थिति से आया हुआ ऐसा तो नहीं ले सकते हैं। हाँ तो ये दो समय यहाँ घटित हो गए। यानी अध्यक्ष और संक्लेश की बात है वहां पर। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण, जैसे मिथ्यात्व में देखा वैसे ही कषाय में भी देखना। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है, ये तो उद्वेलना की अपेक्षा लेना है। इसी प्रकार बादर एकेंद्रिय सूक्ष्म एकेंद्रिय पृथ्वी का एक, बादर पृथ्वी का एक सूक्ष्म पृथ्वी का एक, जल का एक बादर जल का एक सूक्ष्म जल का एक, अग्नि का एक बादर अग्नि का एक सूक्ष्म अग्नि का एक, वायु का एक बादर वायु का एक सूक्ष्म वायु का एक, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर वनस्पति का एक बादर वनस्पति का एक सूक्ष्म वनस्पति का एक निगोद बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद जीवों के जानना चाहिए। बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त जीवों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9-9 कषायों की भुजकार और अवस्थित स्थिति विभक्ति का भंग एकेंद्रियों के समान है। अभी जो हमने देखा वही सही है। तथा अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ऊपर कितना देखा था, पल्ले के असंख्यात विभाग, वहां तो एक केंद्रीय इन जनरल देती है बात। अब यहाँ अपर्याप्त में रहने का जो काल है और सूक्ष्म एक केंद्रीय पर्याप्त भी हो तो भी, अकेले पर्याप्त में रहे तो भी अंतर्मूर्त, अकेले अपर्याप्त में रहे तो भी अंतर्मूर्त, और अकेले दो सूक्ष्म में ही रहे तो कितना काल तक रहेगा पर्याप्त अपर्याप्त में गुम असंख्यात लोक। ये उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त जो है ना, वो तो उसकी स्थिति उत्कृष्ट स्थिति, उस पर्याय की उत्कृष्ट स्थिति। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, यहां भी उस पर्याय में रहने का उतना काल है, इसलिए यहां पल्ले का असंख्यात भाग नहीं लिया है। बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त लिया है, पर्याप्त अपर्याप्त असंख्य वहां तो पर्याप्त अपर्याप्त में बादर एकेंद्रीय पर अंगुल का असंख्यात भाग लिया था ना, दोनों कौन से सूक्ष्म और बादर मिलके तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार पांचों स्थावर का है फॉर्म लगाना, नहीं नहीं थम ठहरो, पांचों स्थावर का है बादर अपर्याप्त, यानी पांचों स्थावर का है बादर अपर्याप्त लेने कॉमन ही चाहिए। पांचों स्थावर का है सूक्ष्म पर्याप्त, यानी काय मार्गणा की अपेक्षा बता रहे अभी यहाँ पर, पांचों स्थावर का है सूक्ष्म अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। जैसे हमने एकेंद्रिय में सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त लिखे, वैसे स्थावर काय की अपेक्षा पर्याप्त अपर्याप्त कह रहे हैं। बादर एकेंद्रिय पर्याप्त विकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय पर्याप्त जीवों में मिथ्यात्व की भुजकार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात 1000 वर्ष है। यह अकेले बादर एकेंद्रिय पर्याप्त में बात आई। तथा अवस्थित स्थिति विभक्ति का काल ओघ के समान है। 16 कषाय और 9-9 कषायों की, ये बादर एकेंद्रिय में बात चल रही है और विकलेंद्रिय में 16 कषाय और 9-9 कषायों की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 17 समय है। तथा अल्पतर और अवस्थित स्थिति विभक्तियों का भंग मिथ्यात्व के समान है। अभी हमने देखा ना मिथ्यात्व की जघन्य एक समय उत्कृष्ट संख्या 1000, वैसे ही इनका भी कषायों में भी समझना। ख्याल में आ रही बात ये, बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों में विकलेंद्रियों में और विकलेंद्रिय पर्याप्तों में ये बात हो रही है। इन्हें अधिक स्थिति के साथ इनमें जन्म लेता है तो लगातार स्थिति घटती चली जाएगी, तो कितने तो इस स्थिति में रहने का, इसमें रहने की उत्कृष्ट स्थिति, लगातार उसी पर्यायों में रहे तो उसका लगातार अल्पतर होता चला जाएगा, इसलिए उसको संख्यात 1000 वर्ष कहा। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की, अल्पतर स्थिति विभक्ति का भंग मिथ्यात्व के समान है। क्यों मिथ्यात्व के समान? संख्या हजार वर्ष क्यों कहा? जगन्य तो एक समय भी हो सकता है, इसमें आया और उद्वेलना समाप्त हुई, और लगातार क्योंकि पल्ले का असंख्यात भाग काल तक वो उद्वेलना होती रहेगी, तो उसमें से संख्यात हजार वर्ष यहाँ घटित करने हैं, तो ये तो घटित तो हो सकता है। विकलेंद्रिय अपर्याप्तकों के इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है इनमें अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अपर्याप्तों में लगातार रहने की जो स्थिति उत्कृष्ट है वो अंतर्मूर्त की है। विशेषार्थ, एकेंद्रियों में मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल दो समय अध्याक्षय और संकलेक्षय की अपेक्षा कहाँ है, तथा 16 कषाय और 9 कषायों की भुजगार स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 17 समय जो दूसरी पृथ्वी में बतलाए है वह एकेंद्रियों के भी बन जाता है। दूसरी पृथ्वी में क्यों बताए? वहां तो असंगी संगी का कोई चक्कर नहीं है, तो वहां पूर्व भव में वो 17 समय घटित हुए थे, तो वही यहां पर ले लेना। एकेंद्रियों के सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार अवक्तव्य व अवस्थित स्थिति नहीं होती। क्योंकि अवक्तव्य होगी तो जिसकी सत्ता नहीं है और सम्यक्त्व प्राप्त किया, भुजगार भी सम्यक्त्व के समय होती है और अवस्थित भी, वो मिथ्यात्व उसकी स्थिति कितनी है, एक समय ज्यादा है और उसने सम्यक तो प्राप्त किया तो होती है, तो ये तीनों ही इसमें नहीं बनेंगे। अल्पतर बनेगी तो उसमें हमने देखी थी उद्वेलना की अपेक्षा अल्पतर बनती है, क्योंकि इनके ये पद सम्यक दृष्टि के पहले समय में ही संभव है। एकेंद्रियों में सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, क्योंकि जो पंचेंद्रिय जीव एकेंद्रियों में उत्पन्न होकर निरंतर एकेंद्रिय ही रहे आते हैं, उनमें सत्ता में स्थित स्थिति को घटाकर एकेंद्रिय के योग्य करने में पल्ले का असंख्यातवा भाग प्रमाण काल लगता है। मूल में बादर एकेंद्रिय और जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त जीवों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। उस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल ही अंतर्मूर्त है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। इसी प्रकार जैसे अभी इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा एकेंद्रियों के अलग अलग भेद दिखाए है, अब काय मार्गणा में स्थावर काय में फिर बादर सूक्ष्म वगैरह करेंगे पर्याप्त अपर्याप्त, इसी प्रकार पांचों स्थावर काय बादर अपर्याप्त तथा सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त जीवों के भी जानना चाहिए। बादर एकेंद्रिय पर्याप्त विकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय पर्याप्त जीवों का उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष कहा, तथा विकलेंद्रिय अपर्याप्तकों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अतः इनमें सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण कहा, शेष कथन सुगम है। ये बात ख्याल में आई? आगे पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा पंचेंद्रिय इतनी अपने क्राइटेरिया, पहले हमने पंचेंद्रिय तिर्यंश में देखा था, अब यहाँ पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त इतना ही बताया। जीवों के ओग के समान जानना चाहिए, उसमें भी संज्ञा असंज्ञा दोनों आ जाएंगे, किंतु इतनी विशेषता है इनमें भुजगार का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व की अपेक्षा तीन समय ये चार समय घटित किए थे, एक इंद्रिय में से लाए थे, अब यहाँ असंगी में से संगी में ले जाओ तो तीन समय घटित हो गए, तथा शेष की अपेक्षा 18 समय है। एक इंद्रिय में से लाते तो 19 समय होते थे, इसे यहाँ 18 समय हुए। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय है। पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों के पंचेंद्रिय तिरंच अपर्याप्तकों के समान जानना चाहिए। विशेषार्थ, पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में संगी और असंगी दोनों भेद सम्मिलित है, अतः इनमें मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल 3 समय तथा 16 कषाय और 9 कषायों की भुजगार स्थिति का अपना भुजगार का काल देख ले ना, उत्कृष्ट निकालना, उत्कृष्ट स्थिति के बदले भुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल 18 समय बन जाता है। मैं भी ख्याल में है क्या करेक्शन करने, उत्कृष्ट स्थिति का लिखा है ना, उसके बदले भुजगार स्थिति का करना। नीचे से चौथी लाइन में दूसरा शब्द है ना, नौ कषायों की उत्कृष्ट, तो नौ कषायों की भुजगार करना वहां पर, एक करेक्शन है 34 पृष्ठ पर नीचे से चौथी लाइन में। नौ कषायों की लिखा है ना, नौ कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का नहीं, नौ कषायों की भुजगार स्थिति का। उत्कृष्ट काल 18 समय बन जाता है, तथा 3 और 18 समयों का विशेष खुलासा पहले किया ही है। इन 3 और 18 समयों का उसी प्रकार यहाँ भी जान लेना चाहिए, हमने देखा था तिरंचों में इसको घटित करके बताया था। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल एक समय उद्वेलना की अपेक्षा प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ उक्त कथन में ओग से विशेषता है, शेष कथन ओग के समान है। देखो देवों में तो हम सम्यक्त्व वगैरह या किसी पर्याय में घटित करना है, देव में या तिर्यंश या, तो वहां तो एक समय कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा भी सम्यक्त्व का लिया था, पर यहाँ पंचेंद्रिय लेना है तो प्राप्त करने वाला भी पंचेंद्रिय है और मर के जाएगा कहीं अन्य तो भी पंचेंद्रिय है, तो वो एक समय उस अपेक्षा से घटित नहीं होगा। जैसे हमने अभी देवों में घटित किया था, कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा सम्यक्त्व का अल्पतर का एक समय घटित किया था, वैसे पंचेंद्रियों में घटित नहीं होगा। ख्याल में आए क्यों नहीं होगा, वो अल्पतर चल रहा है, जब से सम्यक् दृष्टि है तब से अल्पतर ही चल रहा है उसका, तो मर के अन्यत्र जाएगा तो भी पंचेंद्रिय ही रहा, उसके मार्गणा कहां बदली। ख्याल में आई बात, भानुबेन को नहीं आई अभी, देखो निकालो। अभी हमने जो देव में घटित किया था पृष्ठ संख्या 32 पर नीचे से दूसरी लाइन, इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय है। किसमें, ये ऊपर अनुदिश सर्वार सिद्धि में घटित कर रहे हैं, अन्यत्र घटित करना है तो उद्वेलना हो सकती है। अब मैंने 32 पेज देखा विशेषत के ऊपर, नहीं पहले पैराग्राफ के नीचे के दूसरी लाइन, तो वहां सम्यक्त्व की अल्पतर एक समय कैसे घटित किए, क्योंकि वो अनुदिश और सर्वार सिद्धि वगैरह वो देव है तो देव में आते ही वहां सम्यक्त्व के कृतकृत्य वेदक का एक समय बाकी है और फिर क्षायिक हो गए, तो अल्पतर एक समय घटित होगा। ख्याल में आई ना बात, वैसे पंचेंद्रिय में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अरे वो तो पंचेंद्रिय है ना, पहले भी पंचेंद्रिय था, अभी भी पंचेंद्रिय है। मनुष्य में से देव में भी गया तो भी मनुष्य भी पंचेंद्रिय था और देव भी पंचेंद्रिय, मार्ग ना कहाँ बदली वहां पर। देव में तो मनुष्य में से आया था इसलिए देव में एक समय घटित हुआ, वैसे पंचेंद्रिय में एक समय घटित नहीं होगा, ये बात बताना चाहते हैं। इसलिए यहाँ सम्यक और सम्यक मिथ्या तो दोनों को उद्वेलना की अपेक्षा एक समय घटित किया अल्पतर में। इस प्रकार यहाँ उक्त कथन में ओघ से विशेषता है, शेष कथन ओघ के समान है। आगे 35 पृष्ठ पर आए अभी। बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, यानी यहाँ इंद्रिय मार्गना हुई समाप्त भी। अब ये स्थावर काय की कुछ विशेषता बताई थी, अभी ये बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, बादर अग्नि का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त और बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों के, सब प्रकृतियों की भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्तियों का भंग दूसरी पृथ्वी के समान है तथा अल्पतर स्थिति विभक्ति का भंग विकलेंद्रिय पर्याप्तकों के समान है, यानी संख्यात हजार वर्ष वहां पर घटित हो गए। त्रस पर्याप्तकों में 26 प्रकृतियों की भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्तियों का भंग ओघ के समान है। ये त्रस अपर्याप्त जब कही गए तो द्विंद्रिय में से फिर हम पंचेंद्रिय में भी उत्पन्न कर सकते हैं, तो वहां वो घटित होगा ओघ के समान, चार समय हो जाएंगे वहां पर। यानी द्विंद्रिय में उसने भुजगार किया है हाँ, और फिर वो पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ तो असंगी जैसा बंद किया, फिर संगी जैसा किया। ख्याल में आई बात, द्विंद्रिय था, त्रस है तो द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय सबको ले सकते हैं, तो द्विंद्रिय में मरते समय वो अध्यक्ष हुआ, फिर संक्लेश हुआ, फिर विग्रह एक समय एक विग्रह में आया, असंगी जैसा बंद किया, फिर संगी जैसा किया, तो यहाँ चार समय हो सकेगा। त्रस अपर्याप्त लिए और अवस्थित स्थिति विभक्तियों का भंग के समान है, किंतु इतनी विशेषता है यहाँ स्त्रीवेद और पुरुषवेद की भुजगार स्थिति विभक्ति का उत्कृष्ट काल 17 समय है, अभी अपर्याप्त है हाँ, तो नपुसक वेद वाले तथा अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अपर्याप्तों में रहने का लगातार काल अंतर्मूर्त है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, वो भी उसमें रहने का उत्कृष्ट काल। विशेषार्थ, सब अपर्याप्त नपुसक ही होते हैं, इसलिए त्रस अपर्याप्तकों में स्त्रीवेद और पुरुषवेद की भुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल 17 समय ही प्राप्त होता है, यानी यहाँ आने के पूर्व भव में भी उसने उसी का बंद किया था इसलिए। तथा अपर्याप्तकों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कथा शेष कथन सुगम है, यानी अधिक स्थिति लेकर आया है और यहाँ की अपर्याप्त के योग्य कम स्थिति बांधता है तो उसका लगातार काल घटेगा। अब योग में लेते हैं, पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी जीवों में मिथ्यात्व 16 कषाय 9 कषाय, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि इनका काल ही अंतर्मूर्त है। तो मिथ्यात्व का भी 1 समय कैसे होगा, मिथ्यात्व उसके है ही नहीं उसके। उसका एक समय कैसे होगा, एक समय। हाँ तो ऐसा करो ना, क्षय बानवे ने बता दिया था तो क्षय कर दिया, मन अन्य योग में से मनोयोग में आया या वचन योग में आया और उसका क्षय करने का कार्य पूरा हुआ। क्षय करने का प्रोसेस तो चल रहा था, उसका जो अंतिम समय है, दो समय वाली एक स्थिति थी, तो वो टर्न होगी सम्यक रूप से, सम्यक प्रकृति रूप से। तो 16 कषायों का भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जहां जिसकी क्षपणा है वहां तो ये दोनों योग संभव है, तो वहां भी एक समय घटित होगा। तथा शेष कथन दूसरी पृथ्वी के समान है, क्योंकि मनोयोग और वचन योग है। दूसरी पृथ्वी के समान क्यों, वहां तो दूसरी पृथ्वी में जैसे अन्य भव में से असंगी में से नहीं ला सकते हैं, तो ये मनोयोग और वचन योग कब होते हैं, पर्याप्त होने के बाद ही होते हैं। तो विग्रह में कोई अन्य बंध था फिर बाद में कुछ अन्य हुआ, ऐसा तो यहाँ नहीं घटित होगा, क्योंकि पर्याप्त प्राप्त होने के पश्चात ही यहाँ मनोयोग वचन योग होते हैं। इसी प्रकार वैकृत कायोगी जीवों के जानना चाहिए, वैकृत कायोग अलग निकाला क्योंकि वो भी पर्याप्ति पूरे होने पर वैकृत कायोग चलेगा वहां पर। कायोगियों के ओग के समान भंग है, अकेला कायोग लेंगे तो, क्योंकि कायोग में तो सभी प्रकार के कायोग हो सकते हैं, है ना। मुख्यतः कायोग तो एक इंद्रियों में तो कायोग लगातार चलता रहेगा, तो औदारिक भी आएगा, औदारिक मिश्र भी आएगा, तो कायोग का लंबा काल चलेगा। किंतु इतनी विशेषता है, इनके सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति भक्ति का उत्कृष्ट काल पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, जो अभी हमने एक इंद्रियों में देखा था। तो पंचेंद्रियों में से एक इंद्रियों में आया है, लगातार कायोग है। कायोग को अलग इसलिए निकाला है, उसका लगातार लंबा काल प्राप्त होता है। कायोग का अधिक से अधिक काल कितना है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। तो यहाँ पल्ले का असंख्यात भाग क्यों लिया, हाँ स्थिति घटनाने के लिए उतना काल आवश्यक है, बाद में उसमें वेरिएशन होगा। औदारिक कायोगियों में मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। अभी औदारिक कायोगी लिया है, यहाँ वो विग्रह वाला भी नहीं लिया, मिश्र वाला भी नहीं लेना है, तो अध्याक्षय और संकलिक्षय ये दो ही समय ले सकते हैं। अवस्थित स्थिति विभक्ति का काल ओग के समान है, हमने देखा है ना, जगन एक समय उत्कृष्ट यानी लगातार उतना ही बंद होता रहे तो अंतर्मूर्त होगा। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है। अल्पतर का उत्कृष्ट काल कुछ कम क्यों किया, औदारिक मिश्र का काल घटा देना है ना, तो औदारिक कायोग का उत्कृष्ट काल लिया। 16 कषाय और 9 कषायों की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय, इन्हीं में चल रही बात औदारिक कायोगियों में, और उत्कृष्ट काल 17 समय है, क्योंकि औदारिक कायोग पलट जाएगा बाद में, तो अन्य का अन्य 15 का किया था उसने, और बाद में इसका अपना बढ़ाकर अध्याक्षय और फिर एक समय संकलिक्षय। अवस्थित स्थिति भक्ति का काल ओग के समान है, वो अंतर्मूर्त तक हो जाएगा। तथा इन प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति भक्ति का और सम्यक तथा सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति भक्ति का जघन्य काल एक समय, कौन सी बात चल रही है, औदारिक कायोग की बात चल रही है। जघन्य काल एक समय और हुआ और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष। अब यहाँ तो पल्ले का असंख्याता भाग नहीं लिख सकते। औदारिक काय का उत्कृष्ट काय युग का उत्कृष्ट काल 22,000 वर्ष, कुछ कम 22,000 वर्ष, क्योंकि 22,000 वर्ष उत्कृष्ट आयु है। मर के अन्यत्र चला जाएगा तो औदारिक मिश्र होगा शुरू में, तो औदारिक काय योग तो नहीं रहेगा, काय योग रहेगा, औदारिक काय योग नहीं रहेगा। यहाँ जो लिखा ना, इन प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का, इन प्रकृतियों की यानी 16 कषाय 9 कषाय वगैरह वगैरह, तो औदारिक काय योग रहते हुए भी इनकी क्षपणा होगी कि नहीं होगी? हाँ, मनुष्य में होगी कि नहीं होगी? हम लंबा काल देखने के लिए तो 22,000 वर्ष कुछ कम लेते हैं, परंतु एक समय जो घटित होता है तो मनुष्य क्षपणा करने वाला उसमें भी घटित होगा। ये छत्तीस पृष्ठ पर सेकंड लाइन शेष कथन के समान है। औदारिक मिश्र का योगियों में मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। उत्कृष्ट काल तीन समय क्योंकि औदारिक मिश्र लिए है ना, रुजुगति से आया फिर भी औदारिक मिश्र में आया है, हाँ तो पहले से यहाँ बंध ज्यादा शुरू हो जाएगा। हाँ, अध्यक्ष और संक्लिष्ट है। अल्पतर स्थिति भक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। औदारिक मिश्र का काल अंतर्मूर्त है, इसलिए इसको अंतर्मूर्त कहा। अवस्थी स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि उतनी की उतनी स्थिति बांधी। 16 कषाय और 9 कषायों की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 18 समय है औदारिक मिश्र का युग में। उस मिश्र में रहते हुए ही उसने भुजगार बंद किया, उसके योग्य। हाँ, 16+2 अन्यत्र से मरकर नहीं लाना है, औदारिक मिश्र ही रखना है उसका। अवस्थी स्थिति भक्ति का ये हो गया, अवस्थित स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की, औदारिक मिश्र की बात चल रही है, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये एक समय कैसे घटित होगा? हाँ, उद्वेलना भी और सम्यक्त की अपेक्षा कृतकृत्य वेदक भी। वैकिरिक मिश्र का योगियों में 28 प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। सभी 28 को ले लिया। शेष का भंग दूसरी पृथ्वी के समान है, किंतु इतनी विशेषता है कि पद विशेष जानना चाहिए। पद विशेष जानना चाहिए नहीं, उसका जो कुछ कारण है वैकिरेक मिश्र में लेना है। अभी 28 प्रकृति ली तो शेष कौन से बची? ऊपर क्या लिखा? शेष यानी शेष का योग वाले लेना है क्या? अच्छा, अल्पतर बता दिया है, अच्छा, भुजगार के बारे में। हाँ, शेष यानी वैकिरेक मिश्र में अल्पतर बता दिया, और शेष यानी वो तो हाँ भुजगार, उसमें ये होगा कि नहीं होगा? वैकिरेक मिश्र में अवक्तव्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, चार समय नहीं होगा। आहार का योगियों में तीन समय भी कैसे घटित होगा? मिश्र ऑलरेडी चालू हो गया, वो विग्रह वाला भी नहीं ले सकते। दो ही समय हो गए ना। दूसरी पृथ्वी में कितने, हमने दो ही समय देखे थे, पहले पृथ्वी में तीन समय हुए थे, दो समय ही हो गए। आहार का योगियों में सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय, क्योंकि आहार का योग में आते हुए एक समय में मरण हो सकता है। उसने आहार मिश्र में मरण नहीं होता है, आहार का योग में तो वहां भी मनोयोग वचन योग आहार का योग ऐसे पलटते रहते हैं, उसमें आया और मरण हो गया। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। आहारक मिश्र का योगियों में सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि यहाँ मरण नहीं है, यानी अंतर्मूर्त तो वहां रहेगा ही। इसी प्रकार उपशम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए, वहां भी मरण नहीं है, तो वहां भी अंतर्मूर्त घटित होगा। हाँ, अल्पतर के लिए। हाँ, कारमाण का योगियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की भुजगार और अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। हाँ, द्वितीय ऑप्शन वाला। नहीं, द्वितीय ऑप्शन वाला जो मरता है ना, द्वितीय ऑप्शन करते ही मर गया ऐसा? हाँ, करण लब्धि में तो मरता ही नहीं है। हाँ, शुरू में मरण नहीं है, अंतर्मूर्त हो जाएगा। हाँ, नहीं, यहाँ क्या कहते हैं देखो, उपशम समय दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टियों के, यानी वो एक समय घटित नहीं होता, ये बात बता रहे हैं। ये तो अंतर्मूर्त तो रहेगा ही, यानी द्वितीय उपशम प्राप्त करने पर भी अंतर्मूर्त तक तो रहेगा ही उसमें। पहले भाग में हाँ, सातिशय किया फिर भी वो अंतर्मूर्त तो रहेगा उसमें, नहीं तो यहाँ उपशम समय तो हमें एक समय बता देते ना। उन्होंने बोला वहां मरण है कि नहीं, सातवें में उन्होंने द्वितीय उपशम किया और मर गया। द्वितीय उपशम समय की प्राप्ति तो सातवें में ही होती है, अध प्रवृत्तकरण तो सातवें में ही होता है। पहले भाग में मरण नहीं है। हाँ, तो और वहां अगर मरण होता तो यहाँ उपशम समय तो में एक समय घटित करते हैं। कारमण का योगियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और ये पढ़ा था हमने, उत्कृष्ट काल दो समय, क्योंकि भुजगार में जो उत्कृष्ट घटित करना है तो एक इंद्रिय में से हमने वो तो पंचेंद्रिय में आया हुआ जीव लिया, तो असंगी फिर संगी वगैरह वगैरह, यानी वहां दो समय विग्रह में पॉसिबल है, इसलिए दो समय लिया। अल्पतर और अवस्थित स्थिति भक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। एक इंद्रिय में से एक इंद्रिय में जाने वाला सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय, वो भी एक इंद्रिय में से, क्योंकि ये एक इंद्रियों के लिए ही तीन समय लगते हैं। इसी प्रकार अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। विशेषार्थ कारमाण का योगियों में नौकशां की भुजगार और अल्पतर। अच्छा, भुजगार एक समय ऊपर से बेसमय, ऊपर केवल भुजगार ही लिखा है और अल्पतर अवठित बाद में लिखा है। ऊपर जो अल्पतर लिखा है वो नहीं चाहिए था, दोनों निकालना, और उसके लिए ऊपर उसका रेफरेंस है, नीचे से दूसरी लाइन में गुजगार जहन एक समो उपकस बेसमय, नीचे से दूसरी लाइन प्राकृत में मिला ना, प्राकृत में उसका रेफरेंस है ऊपर, नीचे से दूसरी लाइन में गुजगार और अल्पतर लिखा है ना, नीचे से चौथी लाइन में पहले पैराग्राफ के, वो और अल्पतर ये दो शब्द निकाल देना, यानी मिथ्यात्व 16 कषाय 9 कषायों की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल दो समय है, और बाद में अल्पतर और अवस्थित दोनों को एक साथ लिया। अरविंद भाई के बराबर ख्याल में आया, अल्पतर दोनों जगह लिया था, क्या निकालना समझ में आया। विशेषांक पांचों मनोयोग, पांचों वचन योग और वैक्रिय कायोग का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अतः इनमें सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। औदारिक कायोग का उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है, क्योंकि उसमें से औदारिक मिश्र का वो पहला अंतर्मूर्त घटाना, अतः इसमें सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष कहा। औदारिक मिश्र का योग का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अतः इसमें सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। वैकृत मिश्र का योग में भी इसी प्रकार समझना चाहिए, तथा इसी प्रकार आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग में भी समझना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मिश्र योगों में अवक्तव्य भंग नहीं होता। हाँ, नहीं होते, मिश्र योगों में अवक्तव्य भंग नहीं होता। आगे लिखा है, तथा आहारक कायोग और आहारक मिश्र कायोग में एक अल्पतर स्थिति विभक्ति ही होती है, यानी उसमें तो अवक्तव्य होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो क्षपणा का कार्य, विसंयोजना का कार्य उसमें नहीं होता है। और अन्य मिश्र में अवक्तव्य भी नहीं होता, औदारिक मिश्र हो, वैकृत मिश्र हो, तो उसमें वो अवक्तव्य भंग भी नहीं होगा, क्योंकि अवक्तव्य कब होता है, सत्ता नहीं थी और प्राप्त हुई, तो मिश्र अवस्था में तो सम्यक्तो की प्राप्ति नहीं होगी, या वो विसंयोजना वाला जो था वो संयोजना नहीं होगी। उपशम सम्यक्तो और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त है, तथा इनमें एक अल्पतर स्थिति विभक्ति ही होती है, इसलिए इसमें अल्पतर स्थिति के कथन को आहारक द्विक के समान कहा। कार्मण का योग में अध्याक्षय और संक्लेक्षय की अपेक्षा सर्वत्र भुजगार के दो समय ही प्राप्त होते हैं, इसलिए इसमें 26 प्रकृतियों की भुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल दो समय कहा, तथा इसका उत्कृष्ट काल तीन समय है, इसलिए इसमें सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल तीन समय कहा। संसारी जीव के अनाहारक अवस्था कारमान का योग में ही होती है। अब यहाँ मोहनी के विभक्ति वाले जीव लेना है, नहीं तो आप कहेंगे चौदहवें वाले भी संसारी है, उसको क्यों नहीं लिया। अतः इसके कथन को कारमण का योग के समान कहा, शेष कथन सुगम है। अब वेद मार्गणा के अनुसार से अनुवाद से स्त्री वेदियों में मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति भक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है, ये चार समय क्यों नहीं लिए? हाँ, एक इंद्रिय में से आया हुआ तो एक इंद्रियों का तो नपुसक वेद है तो वहां वो नहीं घटित कर सकते, परंतु असंगी संगी में तो घटित कर सकेंगे, तो तीन समय घटित होंगे। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 55 पल्य है। अल्पतर का जघन्य काल एक समय कैसे होगा? क्षपणा में सब जगह अकेले क्षव कृत कृत्य नहीं देखो आप कृतकृत्य वेदक को अन्य भाव में ले जाओ तो वहां स्त्री वेद नहीं रहेगा। और सम्यक का अगर आपको लेना है जगन एक समय तो उद्वेलना में ही लेना पड़ेगा, देवी की अपेक्षा 55। हाँ, मिथ्यात्व का अकेले का है तो मिथ्यात्व में तो हमने क्षपणा ही लेनी है। कुछ कम 55 पल्य, कुछ कम क्यों किया? देवी है ना तो सम्यक्त के साथ जन्म नहीं होता है, तो वहां जन्म लेने के पश्चात सम्यक्त प्राप्त किया है और बाद में अल्पतर होता चला जाएगा। अवस्थी स्थिति भक्ति का काल ओघ के समान है, यानी वही अंतर्मूर्त तक अधिक से अधिक। 12 कषाय और 9 कषायों की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 18 समय है, किंतु इतनी विशेषता है, ये 18 समय कैसे हो गए? एक इंद्रिय में से नहीं लाना, स्त्रीवेद में से स्त्रीवेद में लाना है, स्त्रीवेद में से स्त्रीवेद में। किंतु इतनी विशेषता है, इनके पुरुष वेद और नपुसक वेद की भुजगार स्थिति विभक्ति का उत्कृष्ट काल 17 समय है, क्योंकि वो स्त्री वेद में आया है इसलिए। तथा अल्पतर और अवस्थित स्थिति विभक्ति का भंग मिथ्यात्व के समान है, यानी 12 कषायों के अल्पतर मिथ्यात्व के समान है। अल्पतर हमने कितना देखा था? हाँ, कुछ कम 55 पल्ले देखा था। और जगन्य एक समय भी घटित होता है, क्योंकि वहां भी उनकी क्षपणा तो पॉसिबल है स्त्रीवेदी वाले के भी। अनंतानुबंधी चतुष्क का इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है, अवक्तव्य स्थिति व्यक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि विसंयोजना होती है और फिर संयोजना भी इनमें पॉसिबल है। सम्यक्त सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति व्यक्तियों का काल ओघ के समान है। भुजगार जब 28 की सत्ता वाला है, सम्यक तो प्राप्त करता है तो भुजगार होगा, मिथ्यात्व की एक समय अधिक वाला है, सम्यक तो प्राप्त करेगा तो अवस्थित होगा। और अवक्तव्य में जिसकी सत्ता नहीं उसने सम्यक तो प्राप्त किया तो वह अवक्तव्य हुआ, तो ये स्त्री वेदियों में भी हो गए। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 55 पल्य है, वही बात लेनी है। हाँ, सादिक पचपन इसलिए लिया कि यहाँ तो 28 की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो सकता है। तो पहले अल्प करते करते यहाँ आया है, नहीं हो सकता है, नहीं उसको उतना ही मिथ्यात्व की उतनी सत्ता के साथ आया है। मिथ्यात्व की स्थिति उतनी होगी तो उसका एक समय घट गया है यहाँ पर, तो उसका अल्पतर घटित होगा। यानी पहले भी अल्पतर किया था उसने, फिर यहाँ ने। हाँ अब ये पुरुषवेदी की बात कल देखेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई।